संतप्त मानस शांत हों, विनति गुणों के आनंद महान। समय सार परमागम की सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। 308 से 311 गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें कल ये बात आई थी कि इस प्रवाह में कुंदकुंदाचार्य देव तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जीव कभी अजीव रीप नहीं होता, यद्यपि वो प्रति समय बदलता है, एक समय भी बिना बदले नहीं रहता, फिर भी बदल कर वो कभी अजीब हो जाएगा ऐसी कल्पना नहीं करना। लोग कहते हैं कि जगत में कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी चीज बहुत अच्छी होती है और कुछ लोग कहते हैं कि नई चीज बहुत अच्छी होती है। कालिदास को भी इस मान्यता से आमना सामना करना पड़ा था, जब वो नई नई उम्र के थे और बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखते थे, फिर भी लोग कह देते अभी नौ सिखिया है, हैं? वो अनुभवी कवियों की बात करो, उन्हें बुलाओ। तो उस बात से परेशान होकर उनने एक दफे ऐसा लिखा है अपनी एक किताब में, मालविक अग्नि मित्र, उनका एक नाटक है। मालविका एक राजकुमारी, अग्निमित्र एक राजा, उन दोनों की प्रेम कहानी है। तो उसमें लिखा उन्होंने, पुराण मित्र न साधु सर्वम, पुरानी ही चीजें सब अच्छी नहीं होती और नई चीजें सब खराब नहीं होती हैं। पुरानी भी अच्छी हो सकती हैं, नई भी अच्छी हो सकती हैं, कुछ पुरानी भी खराब हो सकती हैं, कुछ नई भी खराब हो सकती हैं। नीचे की पंक्ति में लिखा कि बुद्धिमान लोग तो उस क्वालिटी को देखकर अच्छे बुरे का निर्णय करते हैं, नई और पुरानी के आधार पर अच्छे बुरे का निर्णय नहीं करते। ये उनको लिखना पड़ा। कालिदास तो कितने प्रसिद्ध कवि हैं, और तुम्हारी बात बहुत कठिन है, बहुत गहरी है, कोई समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, कोई पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, ऐसी चर्चा से हमारे और भी बड़े बड़े कवि प्रभावित रहे हैं। एक कवि को जो बहुत प्रसिद्ध हैं, यहां तक लिखना पड़ा कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, के काल अनंत है, निर्वधि कोई मर्यादा नहीं है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। क्या कह रहा है ये कवि, क्या कहना चाहते हैं? काल अनंत है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि यदि इस जगह के लोग, इस जमाने के लोग मेरे काव्य को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ने दो, बहुत लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कहीं के तो पढ़ेंगे, और काल अनंत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो कोई ना कोई पढ़ेगा। जब मैं लिखता हूं तो ये कह रहे सामने ही वाले हैं, अकेले तुम्हारे ही भरोसे नहीं लिखता हूं क्या? कालो हयम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी। और ऐसे ही अपने एक जैन विद्वान भी हुए हैं यहीं जयपुर में, कौन से नाम है, दीपचंद जी साय, उन्होंने लिखा कि भाई मेरे को जो वस्तु स्वरूप समझ में आया है जो आत्मा का असली कल्याण करने वाला है उसे मुझे दूसरों को समझाने का बहुत भाव आता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, बैठता ही नहीं। आज तो अपन को ये संकट नहीं है गुरुदेव के प्रताप से, क्यों? क्यों उनने माल भी दिया और मार्केट भी दिया है? ना तो सुनने वालों की कमी है और ना माल की कमी है, चाहे जितना गुरुदेव की खजाने में से निकाल लो, क्यों? और जितना को परोसना हो परोसो, जिसमें जितनी ताकत हो, है ना। लेकिन दीपचंद जी साहब को ये सामना करना पड़ा, टोडरमल जी को नहीं करना पड़ा था। टोडरमल जी की सभा में तो ऐसा लिखा है कि 1200 आदमी रोजाना उनके व्याख्यान में रहते थे। यदि वो बात अंदाजा नहीं है और उसमें सत्य का अंश है तो अब समझ लो यहां ये 1000-1500 से ज्यादा नहीं होंगे, 1000-1500। माने इतने आदमी टोडरमल जी की नित्यान की सभा में, नित्यान माने रोजाना की सभा में रहते थे, ऐसा लिखा है। लिखा है कि 400-500 पुरुष और 500-600 महिलाएं, ऐसा लिखा है, नित्यान की सभा में रहते थे। लेकिन उसी के थोड़े ही आगे पीछे दीपचंद जी साहब भी उसी उच्च कोटि के विद्वान हुए और उनको ये संकट था, तो उनने भी लिखा है कि हम भी लिख के रखे जाते हैं, भविष्य में जिसे का काल पका होगा आत्मा के कल्याण का, वो कब पड़ेगा कोई ना कोई, है ना। यहां पर इसमें कुंद कुंज तो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि भैया बदल अति पुरानी चीज अच्छी होती है, तो ये भगवान आत्मा इतना पुराना है कि जितना पुराना दुनिया में कोई नहीं। कैसी बात करते हो, अनंत एक पदार्थ है ना, सभी द्रव्य है ना, आत्मा भी अनंत, पुद्गल भी और आकाश भी, माने इससे ज्यादा पुराना कोई नहीं है। क्यों ये भी किसी से कम पुराना नहीं है। यदि पुरानी चीजें अच्छी पसंद है ना तुम्हें, तो बोले इतना पुराना चाहिए कि नहीं, हमको तो बिल्कुल ताजी नहीं चाहिए, एकदम बासी सब्जी कौन खाता है। क्यों कहते जी कि तुम्हें बासी माने कल की, अरे तुम कल की बात कर रहे हो, ये भगवान आत्मा इतना नया है कभी एक समय पहले ही बदल के एकदम फ्रेश नया हो गया है, प्रति समय नया 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 नया। लिखा ना इस समय आत्मा सुंदर है, लिखा क्या नहीं लिखा, तो अपन को लगता है आत्मा ज्ञान आनंद स्वाभी है, महान है, ऐसा है ऐसा है, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुंदर है, ये सुंदरता की और कुरूपता की बात ये तुम कहां से रहा आत्मा के बारे में, ये तो बातें महिलाओं के बारे में होती हैं कि सुंदर है कि कुरूप है, क्यों ये तुम यहां कहां से ले आए। तो कालिदास ने सुंदरता की भी व्याख्या लिखी है किसी को हाथ उठाओ पता तो, हमारे विद्यार्थी भी नहीं उठा रहे क्या? देखो क्षणे क्षणे अन्नवतम उपैती तदीय रूपम रमणीयताया। रमणीय किसे कहते हैं, सुंदर किसे कहते हैं, तो कालिदास कहते हैं जो हर पल नया नया लगे, नया नया लगे, नया नया लगे। क्षणे क्षणे नवतम उपैती, क्षण क्षण में जो नया नया लगे, तदीय रूपम रमणीयताया, उसे ही सुंदर कहते हैं। माने जिसको देखने से तृप्ति ही नहीं हो, यदि हमें तृप्ति हो जाएगी तो इसका नयापन नहीं रहा उसमें। तो ये भगवान आत्मा प्रति समय बदलता है, इतना नया है कि क्षण क्षण में नया लगता है। अभी इसका ये बदलना और नहीं बदलना, ये दोनों ही जैन धर्म में स्वीकृत हैं। अब इतनी स्पष्ट बात है, देख अपेक्षा गाथा में है, और अमृतचंद्र ने उसे खोला है दो गाथाओं का, जो वर्षापन ने कल पढ़ा था ना, कि ये प्रति समय बदलता है, एक समय भी बदले बिना नहीं रहता है। पर ऐसा नहीं बदलता कि जीव से अजीव हो जाए, तो इसको नहीं बदलना कह सकते। ये भी कह सकते कभी नहीं बदलता, अनादिकाल से अनंत काल तक कभी न बदला है न बदलेगा, आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कि कभी नहीं बदलता, और पर्याय स्वभाव की अपेक्षा प्रति समय बदलता है। कुंद कुंद तो इतनी सी बात कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का उसका जो बदलने वाला काम है वो कोई दूसरा नहीं करता। कहा ना, एक किसी दूसरे का नहीं करता इसलिए किसी का कारण नहीं, और दूसरे ने इसे नहीं किया इसका एक इसलिए ये किसी का कार्य नहीं। हमारी ऐसी आदत है कि हम दूसरे का करें वो हमारा करे, दूसरे करें हमारे। इंदौर में मेरे एक मित्र थे, तो जब वो एक कहा करते कभी आए, कहे पंडित जी आपके पास 2-3 हजार रुपये होंगे? मैंने कहा भाई इस वक्त तो नहीं है। बोले जब तुम्हें जरूरत पड़े ना 10-5 हजार की तो मेरे से मांग लेना। मैंने कहा उनसे भाई साहब एक मिनट, उनका ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको दूं भी नहीं और आपसे लूं भी नहीं। क्या अरे ऐसा होगा तो मित्रता कहां की? यहां जगत को ऐसा ही है ना, हमारे संकट में तुम हमें दो और हम तुम्हारे संकट में हम तुम्हें दें तो ही मित्रता है, नहीं मित्रता कहां की? कुंद कुंद तो ऐसा कहते हैं कि न किसी को देने को हमारे पास रंच मात्र भी है, कुछ अधिक हो तो हम दें दें, और न कोई कमी है कि जिससे हम किसी से मांगे। ये सबसे बढ़िया न्याय है ना। तो कहते हैं भगवान आत्मा किसी का कारज भी नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है, लेकिन एक किसी वाला मामला पर द्रव्य संबंधी है। अपने वाले पर्याय के अंदर द्रव्य के अंदर जो भेद अपन बताते हैं आगम में है, शास्त्रों में अध्यात्म में है, गुरुदेव ने बताया है, अपन भी बताएंगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, इन गाथाओं में वो बात नहीं है। पर दो द्रव्यों के बीच में भेद की बात है, किसी का कर्ता नहीं है किसी का कारण नहीं है, और इससे ये अकर्ता सिद्ध होता है। जैसा अंतिम गाथा की पंक्ति में लिखा है कि अतो आत्मा अकर्ता अधिष्ठते, तो इस तरह इन्होंने अकर्ता भाव की सिद्धि की। वो पर का कर्ता नहीं है इस अर्थ में कि अपने अपने बारे में, कि उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी बता दो कि नहीं, दो बातें एक साथ नहीं होती, पहले तुम यहां मजबूत हो जाओ, हाँ इस वज्र की दीवार को मजबूत कर लो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्योंकि अभी जो हम अपने अंदर की बात बताएंगे ना तुम्हें, तो दीवार टूटती नजर आएगी। क्या कैसे टूटेगी? कि हम कहेंगे राग का कर्ता आत्मा नहीं है, तो तुम कहोगे कौन है? तो कहें कर्म का उदय। क्यों कर्म का उदय कहेंगे ना, तो कर्म पर द्रव्य है। तो तुमने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये दीवार टूट जाएगी ना। तो ये दीवार इतनी मजबूत करो कि किसी कीमत पर नहीं टूटे, तब हम तुम्हें ये समझा पाएंगे कि आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है। तब तक तो हम ये कहेंगे कि रागादि का कर्ता है, ये समझना। मैं गुरुदेव का कोटेशन लाया हूं सब इस सब बात की सिद्धि के लिए, क्योंकि रागादि का कर्ता आत्मा है अपनी पर्यायों का। इतना मेरे कहने से आप लोग मानने वाले नहीं हैं, आप बहुत बड़े अध्यात्मी हैं। ये भी पार कर गए हैं आपको ये गाथाएं भी है? अभी पढ़ूंगा गुरुदेव का, अभी थोड़ा सा मुझे बताना है। तो वो ये कहते हैं कि ये अब जो उन्होंने अमृतचंद्र ने इसकी टीका लिखी, और वो टीका में उन्होंने ये लिख दिया कि जीव अपने क्रमबद्ध पर्यायों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। तो अपने क्रमबद्ध परिणाम कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ और नष्ट होता हुआ, ऐसा लिख दिया कृमि नियमित। तो मैंने कहा ये तो उन्हें अपनी तरफ से लिख दिया। लेकिन फिर मैंने आगे की गाथाएं पढ़ी तो आगे की गाथाओं में कुंद कुंद ने भी वही बात लिखी है। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बस उन्होंने यहां उसमें बीज डाल दिया। आगे कुंद कुंद भी यही बात कहते हैं। बागली बागली समझे ना, हमें तो ये बहुत बड़ी विशेषता, मैंने बहुत गहराई से देखा है कि जब जब मुझे लगा कि मूल गाथा में तो ये है नहीं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन आगे की गाथाओं में आगे देखते हैं तो वो बात बराबर मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमृतचंद्र ने जो ये बात कही है क्रमबद्ध पर्याय की, इसमें उससे कुंद कुंद सहमत नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कुंद कुंद की गाथा में ये बात नहीं है। इसलिए आगे है, वो कहां है, वो आएगा अपना प्रकरण, अपन तो अभी चालू रखे ही है ना, दस दिन में आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो और आगे आएगा अपन, वो क्या है? आना है जरूर, आप समझ रहे ना। तो अभी के लिए कृमि नियमात्म परिणामी पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पे ज्यादा वजन दिया और पूरे क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत यहां से निकाला। इस गाथा पर जब पहली दफे व्याख्यान उन्होंने किया होगा, अब वो पंद्रहवीं दफे था कि सोलहवीं दफे था कि आठवीं दफे का था ये मैं कुछ नहीं बता सकता, तब उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय पर एक दिन एक ग्रुप में आठ और एक ग्रुप में शायद पांच प्रवचन किए थे और बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन ये नौवीं बार में उन्होंने नहीं की, क्योंकि तब तक वो किताब ये स्वभाव ज्ञान स्वभाव के रूप में छप गई थी और बहुत विस्तार से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हो चुकी थी और उनको भी कुछ समय में लगने लग गया था, एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है और लोगों को स्वीकृत नहीं होता, इसलिए नौवीं दफे में नहीं की। तो आप ये मत समझना कि गुरुदेव की इसमें वो है ना, ये स्वभाव ज्ञान स्वभाव किताब उसमें आप पढ़ के देखो तो ये सब बात आपको मिलेगी। कि कृमि नियमित शब्द है, जब समाज में क्रमद पर्याय पर बहुत हुआ पोह मचा तो सामने वालों का एक तर्क आ गया कि कृमि नियमित शब्द है, क्रमबद्ध नहीं है, ये बद्ध सामने वालों ने लगा दिया। कृमि नियमित का फिर क्या अर्थ है आप बताओ, लेकिन वो तो ऐसा उठाते ही रहे, वो इतने जोरदार तरीके से उन लोगों ने उठाया कि जो लोग गुरुदेव श्री के भी समर्थक थे, अनुयायी नहीं कह रहा हूं मैं, समर्थक थे, क्या 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 फर्क है, हम लोग तो अनुयायी हैं और वे समर्थक थे। मैं उस वक्त भी वहां ये बात कहा करता था गुरुदेव के सामने कि जब सोनगढ़ में वो लोग पधारते थे और जब गुरुदेव का प्रवचन होता था तो बीच बीच में भी और बाद में भी वो ये कहते बिल्कुल सही तो कहा, बिल्कुल ठीक तो कहां गलती है, ये मैंने कई दफे सुना है उन विद्वानों के मुख से। मैं ये कहता था कि राय साहब आप सर्टिफाइड कर रहे गुरुदेव को कि एक अद्भुत बात है पर आज तक हमारी समझ में नहीं आई थी, पर ये आत्मा के कल्याण के लिए महा महत्वपूर्ण है, आप ये कह रहे क्या कहना चाहते, आप समझिए ना, हम लोग तो उनमें से हैं कि हमारा जीवन धन्य कर दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने इस रहस्य को बता करके, कल में आए ना, और वो हमेशा सर्टिफिकेट देते रहते थे क्या उन बे लोग समर्थन तो करते थे वो, तो वो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बात तो सही है, इसमें किन्हीं नियमित ही शब्द रखना थी तो अच्छा था, पर अपने क्रमबद्ध पर्याय नाम की किताब लिखी तब ये कहने लगे इसका नाम आप कृमि नियमित पर्याय रखो। मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूं लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैंने कहा नहीं मैं तो क्रमबद्ध पर्याय ही रखूंगा, अगर मेरे से चर्चा होती थी उन विद्वानों की तो मैं एक ही बात कहता था कि कृमि नियमित में और क्रमबद्ध में अंतर है, अर्थ में कि अंतर तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ बे लोग कहते हैं इसलिए हम बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहता था कि ना कृमि नियमित छोड़ो तो क्रमबद्ध नहीं छोड़ो। हम तो कहते हैं कि इस भावना से हम जो बात कह रहे कि सब कुछ सुनिश्चित है और केवली के ज्ञान में आ गया है, प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय की पर्याय में कब क्या होगा, ये आपको मान्य है कि नहीं? यदि यह सिद्धांत मान्य है तो हमें न क्रमबद्ध शब्द से हट है, न क्रम निमित्त से विरोध है, न कुछ नहीं है। और ये मान्य नहीं है तो चाहते शब्दों की बदला बदली कर लो, उसे क्या फर्क पड़ता है? भाव की बात तो भाव की है। ऐसे ही मैं शुद्धोपयोग के बारे में कहता हूं तो सात में होता है, चौथे में होता है, प्रमाण निकाले, ये प्रमाण हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से। मैं कहता हूं कि बताओ आत्मा के अनुभव के बिना सम्मय दर्शन होता है? पर आत्मा का अनुभव कैसे होता है? तो जो आत्मा का अनुभव सारे प्रदेश से उपयोग को हटाकर आत्मा में लगाते हैं तो वो होता क्या नहीं, जिसे हम अनुभूति बोलते हैं, स्वानुभूति बोलते हैं, वो होता क्या नहीं? यहां वो होता है, पर हमारा काम हो गया। चाहे तुम उसका नाम स्वानुभूति कहो, चाहे शुद्ध उपयोग कहो, जो तुम्हें जो कुछ कहना हो उसको कहो, लेकिन वो होता है चौथे गुण स्थान में। सम्मय दर्शन की प्राप्ति उसी से होती है, और हर सम्मय दृष्टि को कम से कम छह महीना में एक बार उसकी अनुभूति होती ही होती है। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय, तो फिर मैं दूसरा तर्क ये देता हूं, अभी तो उन विद्वानों के लिए बता रहा हूं कि भैया छोड़ दो ना क्रमबद्ध पर्याय की बात, एकांजी स्वामी ने निकाली, लेकिन सारी जिंदगी आप लोगों ने हमें सर्वज्ञता पढ़ाई, सर्वज्ञ सिद्धि कराई न्याय शास्त्र में, हा? उस वक्त जो हमने न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा और न्याय तीस किया था ना, तो न्याय प्रथमा में भी सर्वज्ञ सिद्धि थी, न्याय मध्यमा में भी सर्वज्ञ सिद्धि थी, न्याय तीस में भी सर्वज्ञ सिद्धि थी, और हर साल के पेपर में तीनों में सर्वज्ञ सिद्धि कीजिए ये प्रश्न आता ही था। एक बरस भी ऐसा नहीं होता था कि ये नहीं आएगा। तो हमारे गुरु जी कहते ये तैयार कर लो, ये तो गारंटी से आएगा ही आएगा। सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, तो है ना आत्मीमांसा में सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कैसे चिद्ध था, और फिर सत्वम में वासी निर्देश युक्ति शास्त्रा विरोध बाग खूब जटाई उन्हें हमें। अब सारी जिंदगी तुमने हमें सर्वज्ञ की सत्ता का सिद्ध किया है, तो ये बताओ कि सर्वज्ञ जो होता है केवल ज्ञान, वो सबको जानता है कि नहीं, और सब में सब द्रव्य, उनके सब गुण और उनकी सब पर्यायें आती हैं क्या नहीं? इस झगड़ा से क्यों हमें निपटाना चाहते हो? क्यों कांजी स्वामी की वो तो किसी की होगी, तुम्हें नहीं मानना ना मत मानो ना, तुम तो ये बताओ कि तुमने जो हमें पढ़ाया है कि सर्वज्ञ होता है, उस सर्वज्ञ का क्या अर्थ? दुर्भाग्य से हमने पढ़ ली थी, परीक्षा दे ली थी, पास हो गए थे फर्स्ट डिवीजन, लेकिन हमारी समझ में नहीं आई थी, और पूज्य गुरुदेव जी ने ये बताई, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई तब हमारे ख्याल में आई गई बात तो सच्ची है। जैसे उन सबके में भी नहीं आई थी, जब आई तो फिर उनको सब माथा थनका हरेक का, जिन लोगों को विरोध का ही झंडा उठाना था वो तो सर्वज्ञता में भी प्रश्न लगाने लग गए, चलने के भूतकाल का जानता है, वर्तमान का जानता है, भविष्य का नहीं जानता है, तो क्यों भैया भविष्य का क्यों नहीं जानता है? तो अभी हुआ ही नहीं है तो जानेगा क्या? जब होगा तब तो जानेगा, गधे के सिंह को तो कोई जानता नहीं है, अब गधे के सिर पर उगे तो देखेगा, अब उगा ही नहीं है अभी आज तक, तो कैसे देखेगा? तो मैंने कहा उसे त्रिकालज्ञ क्यों कहते हो, दुकालज्ञ को अपने कहते ना त्रिकाल की बात जानता है, कुछ कहने लगे कि नहीं जानता तो है लेकिन सशर्त जानता है, कैसा कि तुम पढ़ोगे तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। अरे इसमें क्या है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ जानता है, ये तो गली गली के लोग जानते हैं। कि छोटा सा बच्चा बाजार में जाता है, बाजार में एक आदमी ज्योतिषी बन के बैठा है ख्याल में है ना, और वो यहां और वो चिड़िया को एक चिड़िया को बैठा ले रखता है ना, वो भविष्य बताता है, वो एक रुपया लेता है। अब क्या रेट है मुझे पता नहीं आजकल, जब मैंने बैठे देखे थे, अब तो मेरा वहां बाजारों में जाना ही बंद हो गया है। एक रुपया लेता था नजारा, तो उससे जाके लड़का पूछता है कि पंडित जी एक रुपया रखा कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मैं इस साल परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं। वो आठवीं में पढ़ता था, तो उसने कहा कि बेटा पढ़ोगे तो पास होगे, तो फटाफट अपना रुपया वापस उठाएगा। बेवकूफ बनाता है ये तो रोजाना हमारी अम्मा हमसे मुफ्त में ही बताती है कि बेटा पढ़ोगे तो पास होगे। हम तो तुमको ये जानने आए हैं कि तुम ये भी बता दो कि हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और पास होंगे कि नहीं होंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं क्या, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि भविष्य सुनिश्चित है, ये सब मानते हैं हम और तुम सब। और ये भी मानते हैं कि हम नहीं जानते, और लेकिन कोई ना कोई जानता है ये भी मानते हैं। ये तीन बातें बिल्कुल पक्की हैं। 6 अरब लोग हैं दुनिया में, ऐसा कहते हैं मनुष्यों, वो 6 अरब में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये नहीं मानता हूं। और इसका प्रमाण बताऊं मैं आपको अभी, है ना? जरा आना सर, अपना हाथ दिखाना, क्या नाम? झगड़ा बैठे बैठे शांति से। मैं यदि हरि पंडित जी आप हाथ देखना भी जानते हो, मैं क्यों नहीं देखना जानते हैं? तो ये दुकान बंद हो जाएगी मेरी, पर वो इतनी जोरदार चलेगी कि लंबी लहर लग के आएगी। क्यों? और मैं फीस भी रख दूं, मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर थोड़ी हूं जो 100-200 रखूंगा। 5,000 रुपये रख दू जती सारी, क्यों? लाइन लग जाएगी, लाइन खत्म नहीं होगी। केवल मुझे बता दो बस, क्या मैं झूठे ही बोल दूं ऐसा? कोई भी आता है आंखें नीचे तो भी हमारा हर आदमी है उससे भविष्य जानने की इच्छा रखता है। यानी वो मानता है कि भविष्य नक्की है, पर कोई जानता है तो सामान्य सर्व की सिद्धि भी होगी और विशेष भी हो गई। सामान्य सर्व की सिद्धि क्या? कि नक्की है, और कोई ना कोई जानता है ये विशेष हो गई। अब कौन जानता है? हम रत्था पुरुष को भी बोलते हैं ना, रत्था पुरुष, गली में चलने वाला जो पुरुष है, वहां उसको भी मान लेते हैं। कोई भी ये धंधा शुरू करे उसका धंधा चलता, हमारे जाएंगे तो माली है, वो तो माली का भाई ने ये शुरू कर दिया, लहन लगती है क्या? और कुछ हमारे यहां के लोग भी तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लोग मुझे ज्योतिषी लोग मेरे पास आए और मुझे उन्हें कुछ जवाब देना पड़े। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित है और वो जाना जा सकता है। अब कौन जानता है और कौन नहीं जानता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। जाना जा सकता है ये बात 100% सत्य है, क्योंकि मुझे तो भगवान की सर्वज्ञता सिद्ध करनी है। भविष्य भी ज्ञान जाना जा सकता है। अब क्या इस शब्द में देखो, क्योंकि क्रमत बजाई तो मैंने पूरी किताब लिखी, मैं भाषण शुरू कर दूंगा तो 10-10 ही दिन निकल जाएंगे। मैं लंबाना नहीं चाहता, लेकिन मुद्दे की बात कहना चाहता हूं कि क्रम नियमित आत्म परिणाम, आत्म माने आत्मा के नहीं, हर एक चीज के अपने अपने, आत्मा माने अपने, खुदगल हो अजीब तो अजीब के, जीव तो जीव के, आकाश तो आकाश के, काल तो काल के। आत्म परिणाम का मतलब ये है, यहां चूंकि जीव शब्द है इसलिए वो अपने आत्मा के भी कह दो तो चलेगा, लेकिन अर्थ उसका वो ही है अपने अपने परिणामों को। तो वो कहते हैं कि वो क्रम से होते हैं, क्यों? पर्यायें दो प्रकार की होती हैं, एक सहभावी एक क्रमभावी। तो सहभावी पर्याय तो गुण को बोलते हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं आत्मा में, और क्रमभावी पर्याय जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती है। गुरुदेव श्री ने बताया और इसका अर्थ है भी ये कि इसके बाद मतलब एक के बाद एक होगा ये तो नक्की है ही, इसमें तो किसी को शंका ही नहीं है, क्योंकि हम देव मनुष्य एक साथ हो जाएंगे क्या। कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है, मतलब ये है कि हमको देव पर्याय चाहिए तो मनुष्य पर्याय छोड़नी पड़ेगी। तो एक के बाद एक इतना ही नहीं है, किसके बाद कौन ये भी नक्की है। क्या एक के बाद एक नहीं और किसके बाद कौन, कि साहब वो तो हर पर्याय में पांच संभाग मिलेंगे तभी तो होगी, कि हाँ पांच संभाग मिलेंगे, वे पांच संभाग भी तय है ना। जब वो पर्याय के होने का स्वकाल आएगा तो वो पांचों संभाग भी गारंटी से वहां उपलब्ध ही होंगे, हैं? तो हमें उन्हें जोड़ने नहीं है कि नहीं, वो तो अनादि से नक्की है। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है मेरे सामने, मैं हर एक से एक ही प्रश्न करता हूं कि ये बात बताओ कि ये बात जो आज तुम कह रहे हो, आज जो यहां पर अपन बैठे हैं ये बात कर रहे हैं, ये बात कोई भगवान महावीर से पूछता तो ये बता पाते कि नहीं बता पाते। क्यों, मेरे पास जितने भी लोग चर्चा करने वाले आते हैं मैं उनसे ये कहता हूं कि आज तुम मुझसे चर्चा कर रहे हो यहां, तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, ये बात भगवान महावीर को पता थी कि नहीं पता थी। तो मेरे ये तो नक्की ही थी, इसमें तुमने क्या किया और मैंने क्या किया। हाँ मैंने चार चक्कर काट लिए और आप नहीं मिले, ये महावीर को पता था कि नहीं। क्यों, ये भी नक्की था तो इसमें क्या का ऑब्जेक्शन, कोई क्या कर सकता है। हर आदमी हर जगह तो हर समय तो उपस्थित नहीं रह सकता, लेकिन जब जिसको जहां होना है वो उसके पांचों संभाग गारंटी से नियम से होंगे ही। ये बात उत्तीका में आ गई, किन्मी नियमात्म परिणामी ऋतुपद मानो, कि हर द्रव्य अपने कृमि नियमित परिणामों से। अब कौन परिणाम, वो परिणाम की उन्होंने विशेषण दिया क्या, कृमि नियमित, एक के बाद एक, एक कहने के लिए जरूरत थोड़ी थी, नियमित क्रम क्रम में आ गया वो, लेकिन नियमित लिखाना तो किसके बाद कौन सा न होगा ये भी नक्की है। और लाखों उदाहरण तो हम अभी भी गिना सकते हैं, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा, ये नक्की है क्या नहीं है? अब अनंत काल बाद कोई व्यक्ति बच्चा पैदा होगा तो पहले उसका बुढ़ापा आ जाएगा फिर जवानी आएगी, क्या आपको पक्का भरोसा है कि नहीं? अनंत काल बाद जो पैदा होगा तो पहले बच्चा होगा फिर जवान होगा फिर बुढ़ा होगा, ऐसा नक्की है ना। और ऐसे एक एक पेड़ का, पौधे का, गाय का, भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, सबका है कि नहीं, एक एक का नक्की है कि नहीं, कि गाय कितने बरस में जवान होगी, कितने बरस में बुढ़ी होगी और कितने में मर जाएगी, और कुत्ता कितने में होगा और बिल्ली कितने में होगी और चूहा कितने में होगा, क्यों, और बरगद का पेड़ कितने में होगा और आम का पेड़ कितने में होगा और गेहूं का पौधा, सब एक एक का अपन देख, लाखों चीजें क्रमबद्ध हमारे ज्ञान में हैं, ये केवली की यहां जाने की जरूरत क्या है, और वे बराबर उसी क्रम से होती हैं, ये इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया आज तक। तो जब इतनी चीजें नक्की हो तो जो ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसमें कहां आ गया। मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये बात इतना परम उत्कृष्ट जाति का सत्य है कि सूरज पश्चिम से उग जाए तो भी ये सत्य नहीं बदलेगा। क्या बात करते हो, इधर मैंने ऐसा कहा क्या, क्या एक बात मैं कहता हूं उसे कोई दुनिया में झूठी साबित करके बताओ, कौन सी, कि सूरज पूरब से उगता है। पूरब किसे कहते हैं, कि जहां से सूरज उगे, ठीक है, बोलो ये सत्य है गलत है, और कहीं पश्चिम से उग जाए सूरज तो, तो भी हमारी बात गलत सिद्ध नहीं होगी। ये कैसा पंडित है, तो सूरज पूरब से उगता है ये कह रहा है, तो सूरज पश्चिम से उग जाए तो भी गलत नहीं होगी। तो मैं ये जिद नहीं करता हूं उससे कि नहीं कैसे उगेगा, नहीं उगने देंगे हम जुलूस लेके जाएंगे, हड़ताल करेंगे, आमरण। मैं कहता हूं हमें क्या डर है, वो उग जाए ना पश्चिम से तब भी हमारी बात गलत नहीं होगी। ये क्यों? क्योंकि हमारी तो परिभाषा ही ये है कि जहां से सूरज उगे उसे पूरब कहते हैं, हमारे बाप का क्या बिगड़ता इसे पूरब कहेंगे। क्यों? वे लोग कहते क्रमर जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं हुआ, तो बोलो क्या जवाब है इसका? सुरेश जी ये जवाब दे ही रहा हूं मैं, उसमें क्या डरने की बात है? अरे भाई कैसा होगा, जैसा हमने कहा वैसा नहीं होगा, तो जैसा होगा ना हम कहेंगे वैसा ही नक्की था, हम क्या करें, हमें पता नहीं था। ये किरमत बजाय इतनी लचीली है कि इसमें किसी कीमत पर कभी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती है। हमें पहले पक्का पता हो, सर्वज्ञ हो हम, और फिर वो बदल जाए तो चिंता की बात है। अब हमें पक्का पता ही नहीं है तो उसमें तो बदलाव हो ही सकता है। क्यों? अगर सर्वज्ञ की बात में बदलाव हो गया तो इसे सर्वज्ञ कैसे पूछना पड़े कि तुमने भैया कैसा जाना था और कैसा नहीं हुआ और कैसा हो गया? क्यों? समझे ना? तो ये बिल्कुल सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। अब मैं कुलदेव का जो प्रवचन मैंने यहां महत्वपूर्ण दिया है वो पढ़ना चाहता हूं, और उस पर जो भी चर्चा होगी अब उसी के माध्यम से अपन करेंगे। आपके पास है, निकालो पेज नंबर 216, सबसे नीचे की तीन पंक्तियां, ये जो है ना हाथ, हाँ ये छोटी किताब हाथ में जो आपके है, यहां जो कृमि नियमित शब्द है, एक पूज्य गुरुदेव श्री का है, ऊपर लिखा है देखो, इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने जो कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया है उसका सारांश इस प्रकार है। समझ में आया ना? सारांश का मतलब है समझ समझना कि मैंने सारांश लिख दिया है, ये सब मैंने पेज नंबर दिए हैं नीचे रचन रत्नाकर में से निकाल निकाल के दिया है, हैं? यहां जो कृमिनियमित शब्द है उसमें कृमि तो सिद्ध है ही, साथ ही कृमि से नियमित यह भी स्पष्ट है। कृमि नियमित शब्द यह बताता है कि द्रव्य के इस समय होने योग्य यही पर्याय होगी ऐसा निश्चित है ना? तात्पर्य है कि जो जीव में जो पर्यायें जिस समय होनी होती हैं वे अपने स्व अवसर में ही प्रकट होती हैं, क्योंकि यहाँ जीव का प्रकरण है, इसलिए जीव जीव कह रहे, बात छह द्रव्यों की है ना? वर्तमान में जो पर्याय प्रकट होती है वही उस पर्याय का उत्पत्ति का काल है, उस पर्याय का वही जन्म क्षण है। प्रत्येक समय में उत्पन्न होने वाली सभी पर्यायें अपने जन्म क्षण में ही होती हैं। यद्यपि बात सूक्ष्म है पर सर्वज्ञ देव के द्वारा जानी देखी और कही हुई बात है। देखो ये ना ये लिखा, अब देखो उन्होंने कहा वही उसकी काल लब्धि है, वही उसका जन्म क्षण है, तो इसका भी गुरुदेव ने प्रमाण निकाला है। देखो इसी में निकालो पीछे पेज नंबर 220 पे तीसरी पंक्ति, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में द्रव्य की जिस समय जो पर्याय प्रकट होती है उसे इसकी काल लब्धि कहा है। वो जो काल लब्धि अपन पढ़ते हैं ना, वो तो जो पांच लब्धियां हैं उनमें काल लब्धि कहाँ है? पांच समवायों में काल लब्धि आती है, तो वो कहते हैं कि एक कार्तिकानुपेक्षा में लिखी है, कि जिस समय जो पर्याय प्रकट होनी है ये उसकी काल लब्धि है। तो काल लब्धि के बिना कुछ हो नहीं सका, काल लब्धि का कोड़ उपाय करो तो नहीं होगा, है ना। अब देखो प्रवचन सार की 102वीं गाथा में इसी बात को अपनी पर्यायों का जन्म क्षण कहा है। ये जन्म क्षणों काल लब्धि की बात वहां कर रहे हैं, कर चुके थे, बात खत्म थी, लेकिन फिर द्वारा कह के वो प्रमाण पेश करते हैं कि प्रवचन सार में इसका जन्म क्षण लिखा है। यानी ये कहते हैं कि क्रमवद पर्याय की बात लोग पूछते हैं कि कहां कौन से शास्त्र में लिखी, अब उनको पूरी सीधी ऐसी दिखाओ कि एक क्रमवद पर्याय लिखी है, ऐसी तो कहीं मिलेगी नहीं। अब कहीं जन्म क्षण लिखा, कहीं काल लब्धि लिखा, कहीं, यानी हमें उस भाव को पकड़ना पड़ेगा तो कदम कदम पे मिलेगा। भाव को नहीं पकड़ेंगे और ऐसे आप पूछोगे तो हो सकता हम एक जगह भी नहीं बता पाए। मैं तो ये कहता हूं डंके की चोट सभा में भरी में, पहले जब क्रमवद पर्याय पे बोलता था कि आप कोई भी शास्त्र उठाओ, ऐसा लो, ऐसा मंदिर में से, अपने यहां से नहीं और जिसके मंदिर में से जाना हो, जहां से वो कहीं से छपा हो, और उसको ऐसा उठाओ और आंख मीच के ऐसा खोलो, जो पेज खुलेगा उस पर मैं आपको क्रमवद पर्याय बताऊंगा लिखी हुई। मतलब क्या कह रहे, एक शास्त्र का एक पेज, एक पंक्ति ऐसी नहीं है कि जिसमें क्रमवद पर्याय की बात नहीं आती है, लेकिन निकालना सीखना पड़ेगा, है? निकालना सीखेंगे तो वो निकलेगा। तुम डायरेक्ट क्रमवद पर्याय ऐसा लिखी बता दो तो ऐसा नहीं निकलेगा। तो अपने चारों अनुयोग से सिद्ध करके बताई है ना क्रमवद पर्याय किताब में, अब पूरे प्रथमान योग भविष्य की घोषणाओं से भरा पड़ा है। बोलो यदि भविष्य नक्की नहीं है तो वो घोषणा कैसे हो सकती है, और तो सर्वज्ञ भगवान ने कही है, बोलो प्रथमान योग के कदम कदम पर है ना। अब मैंने दो उदाहरण लिख दिए, एक नेमिनाथ का 12 वर्ष का और एक महावीर, आदिनाथ ने कहा कि महावीर होगा। अब तुम लाखों उदाहरण निकाल सकते हो, तुमको और कितने निकालते जाए और कितने निकालते जाए, सब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बोलिए। ये लिखा है ना शास्त्रों में कि पांचवें काल के बाद छठवां काल आएगा, छठवां काल के बाद फिर छठवां आएगा। छठवां क्यों आएगा, फिर पांचवां आना चाहिए कि सातवां आना चाहिए, कोई वापस में नहीं करता है? फिर पांचवां आएगा, फिर बढ़ते जाएंगे, फिर चौथा आएगा, फिर उसमें तीसंकर शुरू होंगे, फिर चौथे के बाद तीसरा आएगा, तीसंकर होना फिर बंद हो जाएंगे है? और ऐसा कब तक होगा, क्यों अनंत काल तक? तो अनंत काल की बात तुम जानते हो भैया, सर्वज्ञ तो तुम ही बैठे हो, ये सब बातें लिखी ना कि ऐसा ऐसा होगा। अब उनके नाम भी लिखे हैं, सब लिखे हैं, प्रथमान योग में लिखे हैं, अब एक करणान योग में लिखा है, सब मेरे कहने का मतलब है कौन से अनुयोग में कहां नहीं है, सब जगह ये बात लिखी है और डायरेक्ट भी लिखी है, जो जो देखी बीत राग ने सो होसी वीरारे, और अनुहोन कभी नहीं होसी काहे होत अधीरारे। अब देखो बीतराग ने लिखी, सर्वज्ञ ने क्यों नहीं लिखी, बीतराग देखते हैं, जो जो देखी बीतराग ने, क्यों कि जो बीतराग ही होता है वो सर्वज्ञ भी होता है, घबराना नहीं। देखा तो केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन बीतरागी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रागी भी जो देखा होता है कभी कभी राग देश बस वो नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, इन्हें पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है, क्या करें, कोई फायदा नहीं है कि तुम्हें हाथ देख करके यदि ऐसा लगे कि ये इसकी मौत परसों होने वाली है तो बताना मत, क्योंकि यदि वो परसों नहीं मरा तो तुम्हारी इतनी पिटाई होगी। होता कभी होता, इसलिए जयपुर में ऐसा हुआ भाई साहब, एक मेरी सभा के मुमुक्षु भाई थे जतीश भाई, जब अपने पवित्र में जाते थे, बड़े मंदिर में जाते थे ना, तो उनका नाम था बाबा नथमल जी, यहाँ के जो बैठे हैं पुराने आदमी वो सब जानते हैं, वे हाथ उठा सकते हैं मुझे मेरा समर्थन करने के लिए। अरे तुम तो बैठे ना, अरे बोलो ना, बाबा नथमल जी थे, उनके एक लड़की थी और लड़का लड़का कोई था नहीं। तो मेरा सर बहुत मेरे प्रेमी थे, तो हम बड़े मंदिर प्रदर्शन करने जाते थे और लौट के आते थे ना, तो हमको कहीं हमारे लिए वो सब्जी खरीद के एक थैले में रखते थे और जब हम आते थे हमारी गाड़ी में रख देते थे। हमारी सब्जी खरीदने का काम हो जाता था, महीना में जब भी होता इकट्ठा हिसाब बता देते, हम पैसा देते थे। मतलब बहुत नजदीक का संबंध था, रोजीना का काम, रोजीना उन्हें प्रवचन सुनना और हमारी सब्जी का मामला निपटा देना, ऐसा बरसों चला, बरसों। तो उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम फला फला दिन में फला तारीख को मर जाओगे। अब उनको वो पक्का हो गया। अब पक्का होते उन्हें अपनी सारी संपत्ति निकाल दी, ये कह दी इसको दे दी, उसको दे दी, बच्ची को देनी थी बच्ची को दे दी, सब पूरा ये सब हिसाब किताब निपटा निपटू करके एक पैसा भी अपने पास सोनगे के किराया लाख पैसा रखा और थोड़ा सा पैसा रखा और सीधे सोनगढ़ चले गए कि अब तो मैं सोनगढ़ नहीं देह छोड़ूंगा। चलो वो काशी चला गया था अपना पंच कल्याणक वाला, मैं काशी नहीं दूंगा, चले गए। सच्ची घटना, नाम लेके बता रहा हूं मैं आपको। अब तारीख निकल गई जो नहीं मिले और वे दो पांच बस जितने भी जिंदा रहे अभी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अब वो बहुत संकट खड़ा हो गया, जिनको पैसा देते सबने आंखें फेर ली, लड़की ने भी, उन्हें रोटियों के लाले पड़ गए। क्यों ये बैठे हमारे सामने, ये उस वक्त कैसे होता है जी हमारे, ये 40 वर्ष हो गए मैं दशहरे के दिन जो आ रहा ना परसों दरसों दशहरा आ गया 2-3 महीना में उस दशहरे के दिन 40 वर्ष हो जाएंगे, और तब से पहले दिन से जो श्रोता है मेरे तो बहुत कम रह गए हैं। ये ऐसा जब कितना खतरनाक है, अरे वो ऐसी सर्वज्ञ की बात समझता है क्यों। अरे भाई क्या सब कुछ तो उसका क्या हुआ भैया, फिर उसका क्या हुआ। मैं कहूँ उसका ऐसा ही होना था, भगवान महावीर से पूछते तो वो बताएंगे कि इस ज्योतिषी के चक्कर में आएगा और ऐसा फंसेगा और फिर ऐसा हो जाएगा। देखो परी सभा में कह रहा हूँ, इसमें फिल्म बन रही है और ये टीवी पे जाएगी, एक दिन आप टीवी पे भी सुनेंगे कि उनसे याद है ना जी। ये जानता हूं मैं, पक्के प्रूफ के साथ बात करता हूं, ऐसी वैसी हुई यहां की बात नहीं करता हूं, तो ये सारी दुनिया के लिए हितकारी बात है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के विरोध में कोई विरोध करने की बात नहीं है। इससे कोई देखो नक्की था नहीं मारा मैंने, नक्की कहां था, जब नक्की है तब तो मरेगा ही क्यों। हम इतना जानते हैं कि हमें ज्योतिषी मान चाहे मत मान, कि तुम्हें एक ना एक दिन 10-20 वर्ष में मरना ही होगा। क्यों बोलो इसमें क्या शंका है, क्यों कोई को 10 वर्ष बाद, कोई को 20 वर्ष बाद, कोई 1000 वर्ष तक कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, ये बात सच्ची है ना। इसका प्रूफ क्या है, यदि ऐसा होता तो हमारे बाप दादाओं में भी कोई ना कोई तो जिंदा रहता आज तक। बात तो पक्की है कि मरना पड़ेगा, लेकिन अच्छी तो नहीं है क्यों, सच्ची है और अच्छी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बात सच्ची हो और अच्छी ना हो, अब मुझे बताओ ऐसा लोग में हो सकता है कि सच्ची हो और अच्छी ना हो। अरे बहुत अच्छी है, यदि 1000 वर्ष तक हम जिंदा रह गए तो कोई हमारी पहचान का नहीं रहेगा। सचमुच मैं बहुत अपने को कभी कभी अनाथ महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने राम जी भाई के साथ काम शुरू किया है, उनके बेटे बैठे यहां ये मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं उम्र में, अब वे कितने बड़े होंगे समझ लेना। राम जी भाई मैं 20 वर्ष की उम्र में लग गया इस लाइन में, और इसी दमखम के साथ 24 घंटे क्या, तब तो से धीरे धीरे सब छोड़ छाड़ के चले गए, लालचंद भाई, बाबू भाई, खेमचंद भाई है ना, बादनी जी, गोदगा जी, सब चले गए, ऐसे दिखते ही नहीं कोई बगल में है? अब मेरे विद्यार्थी हैं, अब इनसे कोई ज्यादा सलाह मशवरा करने की पोजीशन तो बनती नहीं है, इनसे तो विचारों से जो कहो तो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, कर देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कभी कोई बात सोच के कोई डिसीजन करना हो तो ऐसा नहीं दिखता कोई कि जिससे मैं विचार विमर्श करूं। मुझे वो बात याद आती है जब गोविंद वल्लभ पंत मरे थे तो नेहरू जी ने मालूम क्या कहा था कि आज वो अंतिम व्यक्ति मर गया है कि जो मेरा हाथ पकड़ के कह सकता था कि नेहरू ये गलत है, तुम इस पर सवाल मत करो। अब क्या, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे से कुछ गलत होगा तो मुझे कोई टोकने वाला तो है ही नहीं। ऐसे लोग चाहिए कि हमको किसी से सलाह मशवरा करें तो हाँ ठीक, आप जो कह रहे बढ़िया। इसके लिए नहीं पूछ रहे भैया, तुम गंभीरता से विचार करो और नहीं जचे तो बताओ, हम उस पर गंभीरता से विचार करें। अभी कहीं तो 78 वर्ष के भय, तब तो ये हालत हो गई, और 1000 वर्ष के हो जाएंगे तब, अब सोचो तुम अपनी अपनी भी सोचो, तब कोई अपनी जान पहचान का कहीं नहीं रहेगा, चाहे सोन में जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कहीं जाओ, अपने गांव में जाओ, क्यों कोई नहीं मिलेगा जान पहचान का। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब लोग मिल मिला करके अपन को चिड़िया घर में रख दें कि 1000 वर्ष पुराना आदमी देखना हो तो ऐसे देखो, पर 1000-2000 की टिकट लगा दे कि 1000 वर्ष का पुराना आदमी क्यों देखना हो तो 1000 का टिकट लेके जाए। अरे उस जड़ उसी लग सकती है ना, वो कोहिनूर की 1000 रुपए की टिकट लग सकती है ना है? अपन तो चैतन्य हीरा है, कोई प्रयोजन नहीं सुनेगा अपना, अपनी कोई बात नहीं सुनेगा, वो अपन को देखने की वस्तु मान लेंगे। क्या हालत हो जाएगी कल्पना करो, ऐसी स्थिति में आप जिंदा रह पाओगे? अच्छा है कि हम 100 वर्ष या 100 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रहे, 100 वर्ष में भी कैसी हालत हो जाती है, लोग देखने आने लगते सुनने नहीं, क्या कहते हैं, लोग सुनने नहीं, समझने नहीं, कुछ पूछने नहीं देखने आने लगते हैं, माने हम दृश्य हो जाते हैं, श्रव्य नहीं। अच्छी है स्थिति, चाहिए आपको, भले ही हमें मौत बुरी लगती हो, भले ही हमको ऐसा लगता हो कि ये बहुत जितने ज्यादा जिए तो अच्छे हैं, लेकिन सचमुच ये अच्छा नहीं है, थोड़ा ही गंभीरता से करो तो ये अच्छा नहीं है, ख्याल में आई ना। अरे मैं सक्रिय लाइफ में खत्म हो जाए, पर्याय बदलने, झगड़ा खत्म है, कोई लोग देखने आए, कोई को हमारी सेवा करनी पड़े, ऐसा मौका किसी को ना मिले हे भगवान, हम तो ऐसी प्रार्थना करो क्या। अब इतनी सभा में बैठे हैं, कोई नई उम्र के भी बैठे हैं, इसलिए मैं 100 वर्ष बोलता हूं, ये बच्चे कहेंगे कि तुम्हें जाना है तो हमारे लिए भी भेजने लग गए हैं, क्यों 100 वर्ष से ज्यादा कोई रहने वाला नहीं है, ये पक्की गारंटी है कि नहीं। अब महावीर भी इसे झूठा नहीं कर सकते, उनके कयान में भी यही झलका होगा, बस इतना फर्क है कि वो एक एक आदमी का एक एक पलका बता सकते हैं, पर हमने एक सामूहिक बताया कि इतना इस ज्यादा इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो वो ही है, सभी लोग इस में बताया हुआ जो महान सिद्धांत है। अभी गुरुदेव का तो अपन कितना ही पढ़ पाया है, कल अपन इस गुरुदेव के पाले को आगे पढ़ेंगे, आपके पास किताब है, अब ले जाएं और इसे पढ़ के आए गुरुदेव का पूरा, तो अपन को यहाँ पढ़ने में और मजा आएगा। और लेकिन एक ही शर्त है कि किताब वापस लाना नहीं तो अपने कमरा में छोड़ के आ जाओ, तो यहाँ अपने हाथ में ले जाओ और वापस लेके आना।